मेरी स्वामिनी मेरा धे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सोते रो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा हाय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा हाय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठकी श्रीमद्भागवतम स्कंध एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक 8 और 9 कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृत कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्रेह कर्मभी ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महत वीर्यमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूष भूतेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सुलंक श्रेष्ठ भगवान वचांस में हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस भागवत सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर ऐसी भक्ति दान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रति बुधवार को भागवत सत्र चल रहा है। ये वही भागवत है जिसे भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रदान किया था। कृष्ण से विमुख होकर जीव जब इस संसार में पटका जाता है, कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे, कृष्ण से विमुख होकर जब माया जीव को इस संसार में भेजती है और जीव इस संसार में आकर कई प्रकार के दुख भोगता है, यदि वह जीव इस संसार में रहकर सुख का मार्ग प्राप्त करना चाहे, इस संसार में किस प्रकार जीवन बिताना है, किस प्रकार इस संसार में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, यह सब यदि जानना है तो भगवान के द्वारा दिए हुए वेदों से हम जान सकते हैं। जीवों के रहने के लिए जब इस पृथ्वी का निर्माण किया गया तो पृथ्वी के साथ साथ भगवान ने वेद और शास्त्रों का भी निर्माण किया। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, जब कोई कंपनी कोई नया मशीन या टीवी वीडियो बनाती है तो उसके साथ साथ एक कैटलॉग भी बनाती है जिसे खरीदने वाला व्यक्ति उस नए टीवी को या डीवीडी प्लेयर इत्यादि को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। परंतु यदि कोई मूर्ख व्यक्ति टीवी खरीदने जाए और टीवी खरीद कर घर पे लेकर आए और वह मैनुअल न लेकर आए, क्योंकि वह टीवी उसके लिए बहुत नया है, किस प्रकार से उसे इस्तेमाल करना है वह नहीं जानता है, तो बिना मैनुअल पढ़े वह टीवी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिना मैनुअल पढ़े यदि वह टीवी को इस्तेमाल करना चाहे भी तो वह टीवी बिगड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने यह सृष्टि बनाई, सृष्टि के साथ एक मैनुअल बनाया और उस मैनुअल में पूरा लिखा हुआ है कि किस प्रकार मनुष्य को इस पृथ्वी में रहकर कर्म करने चाहिए। यदि मनुष्य यह अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो इसका बुरा फल मिलता है, अच्छे कर्म किसे कहते हैं, बुरा कर्म किसे कहते हैं, यह सारी बात सृष्टि के रचना के साथ भगवान ने वेद और शास्त्र में लिखी हुई है। परंतु जैसे वह टीवी खरीदने वाला व्यक्ति वह मैनुअल को नहीं पढ़ता है तो वह टीवी बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान के दिए हुए वेद और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, वेद और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है तो उनका जीवन बिगड़ सकता है, और बिगड़ा हुआ है हम देख रहे हैं। संसार में सब लोग दुखी हैं, इसका कारण यही है कि अपना जीवन वह वेद और शास्त्रों के अनुसार नहीं बिताते हैं। तो इस संसार में रहने वाले मनुष्यों की सर्वप्रथम कर्तव्य है कि भगवान के दिए हुए वेद और शास्त्र का अध्ययन करें और समस्त वेद और शास्त्रों का निचोड़ है, सार है श्रीमद् भागवतम। भागवत के प्रारंभ में ही व्यासदेव जी ने लिखा है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखा दयेत अमृत द्रव संयुतम। हे भागवत सुनने वाले श्रोताओं, यह श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरु गलितम फलम, कल्पतरु निगम, यह समस्त वेद उपनिषद शास्त्रों का पका हुआ फल है। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, पठन करता है, तो व्यक्ति जान सकता है कि किस प्रकार हमें जीवन बिताना चाहिए और इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, ये हम जान सकते हैं। तो बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्रति बुधवार को प्राप्त हो रहा है कि इसी भागवत का श्रवण करने हमें मिल रहा है। तो इस भागवतम श्रवण के दौरान हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में पहुंचे हैं। कथा सुनाने वाले सूद गोस्वामी है और सुनने वाले 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हैं, और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठकर इस सब लोगों को नहीं बांटा है, सभी लोगों के पास पुस्तिका है, ठीक। तो 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं जिसकी चर्चा हमने अगले प्रवचनों में की। तो 88,000 ऋषि मुनियों का उत्तर देते देते सुद गोस्वामी कहते हैं, धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पाद येत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ माने गए। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थात पुंसाम अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो अर्थ है, जो लाभ प्राप्त करना है, वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य जीवन प्राप्त करके इनका निर्वाह करते हैं, और यह धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के लिए बहुत ही सुंदर भगवान ने वर्ण और आश्रम की योजना बनाई है। गीता में भगवान कहे हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। हे अर्जुन, मेरे ही द्वारा चार वर्ण और चार आश्रम की स्थापना हुई है, और यदि कोई यह चार वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना जीवन बिताता है तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। परंतु सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन बिताने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। यदि बहुत सुंदर धर्म का पालन करे, धर्म का अर्थात पति धर्म, पुत्र धर्म इत्यादि, बहुत सुंदर वर्ण और आश्रम का पालन करे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। तो जीवन में किया हुआ सब कार्य एक श्रम मात्र है, व्यर्थ है। जब इस प्रकार से सुध गोस्वामी ने कहा, तब 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि आप धर्म को इस प्रकार से क्यों कह रहे हो। इस संसार में लोग कई सारे धर्मों का पालन करते हैं, और आप बिल्कुल तुरंत कह दिए कि यदि धर्म का, बहुत अच्छे धर्म का पालन किया जाए परंतु कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो वह धर्म कुछ काम का नहीं है, और वह धर्म किया हुआ एक गधे की तरह किया हुआ श्रम है। तब सुध गोस्वामी कहते हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका फल क्या है, यह दो श्लोकों में सुध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुध गोस्वामी कहते हैं कि धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष प्राप्त करना। इस संसार में कई लोग धर्म का पालन करते हैं परंतु उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं होता है, उनका लक्ष्य कुछ धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए इत्यादि होता है। परंतु ये दो श्लोक में कह रहे हैं कि धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष की प्राप्ति, और अर्थ का वास्तविक फल है धर्म की प्राप्ति, काम का वास्तविक फल है जीवित रहना, और जीवन का वास्तविक फल है जिज्ञासा करना। यह चार बात सुध गोस्वामी यह आगे के दो श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे धर्मस्य ही अपवर्गस्य। यह हमारे श्लोक में सबसे पहले धर्म शब्द आया है। यहां पर धर्म का अर्थ है वैदिक कर्मों का जो अनुष्ठान है उसे धर्म कहा जाता है। वेदों में कई प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान दिया गया है, जैसे कि तपस्या, दान, हवन, वेदों का अध्ययन। तो यह तपस्या, दान, हवन, वेदों का अध्ययन, ये जो कार्य है इसे धर्म कहते हैं। तो इस धर्म को जीवन में अनुष्ठित करने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, और वह योग्यता अनुसार कुछ लोग ब्राह्मण के कर्म करते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय के कर्म करते हैं, कुछ लोग वैश्य के, तो कुछ लोग शूद्र के कर्म करते हैं। और जिस प्रकार से वेदों में कहा गया है कि यह कार्य करोगे तो आपको यह मिलेगा, ये हवन करोगे तो आपको यह सुख मिलेगा, तो इस प्रकार से यह नाना प्रकार के धर्म का पालन करके लोग सुखी होना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इस संसार में साधारणतया देखा गया है कि कुछ लोग अलग माता जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक मानते हैं, लेकिन उस धर्म का फल क्या होता है, वे धर्म का पालन क्यों करते हैं? हम धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि हमें थोड़ा धन मिल जाए, उद्देश्य यह होता है। कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं अच्छा घर प्राप्त करने के लिए, कुछ कुछ लोगों के पास संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ, धन की, पुत्र की, कई सारी भौतिक कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए लोग धर्म का पालन करते हैं। तो इससे भी जो बुद्धिमान है वह सोचते हैं कि इस संसार में यदि हम रहेंगे, इस पृथ्वी पर वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो स्वर्ग में है। तो कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में भी चला जाए, यद्यपि वेदों में यह लिखा गया है कि स्वर्ग में बहुत बहुत सुख है, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग लोक बहुत विशाल है और उस विशाल स्वर्ग लोक में विशाल बहुत लंबी उम्र दी जाती है और विशाल भोग और सुख है। परंतु दुख की बात है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, परंतु उस स्वर्ग में रहते हुए भी जब अपने पुण्य का अकाउंट, अपना पुण्य समाप्त हो जाता है तो उस स्वर्ग से उस व्यक्ति को इस पृथ्वी लोक पर पटका जाता है। तो स्वर्ग प्राप्त कर लेना यह कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है, परंतु इस संसार के मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए धर्म का पालन करते हैं। स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग से भी जन लोक, मर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक में भी यदि कोई पहुंच जाए, उस ब्रह्म लोक से भी यहां पृथ्वी पर आना पड़ता है। गीता में भगवान को कहना पड़ा, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन, ये अर्जुन यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करके स्वर्ग लोक की बात दूर रही, ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाए, फिर भी पुनरावर्तिन उसे पुनर्जन्म लेना होगा और पुनर्जन्म प्राप्त करके उस माता के गर्भ में जाकर 9 महीने तक दुख भोगत के इस संसार के दुखों में फंसना होगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस संसार के लोग जो धर्म का पालन करते हैं वह धर्म का पालन का वास्तविक फल नहीं जानते हैं। कुछ धन के लिए धर्म का पालन करते हैं, तो कुछ गाड़ी बंगला, तो कुछ ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के लिए धर्म का पालन करते हैं, परंतु ये वास्तविक धर्म का अर्थ नहीं। मैं भगवद्गीता कोर्स में अक्सर दृष्टांत दिया करता हूं कि एक बहुत बड़ी सेंट्रल जेल थी, उस जेल में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदियों को रखा जाता है, उम्र कैद तक, जब तक मृत्यु ना आए मृत्यु तक जेल में पड़ना है और सड़े रहना है। परंतु एक दिन की बात, उस जेल का 100 वर्ष पूर्ण हुआ था और प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल तक रह गए थे, तो उस जेल में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और प्राइम मिनिस्टर उस जेल की मुलाकात के लिए आए और प्राइम मिनिस्टर, वड़ा प्रधान इतने खुश हो गए कि उस जेल में रहने वाले कैदियों की वे समस्त इच्छा पूरी करना चाहे और अनाउंसमेंट कर दिया कि इस जेल में जितने भी कैदी हैं सबकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो जेल के जितने भी कैदी थे सब लोग लाइन में खड़े रह गए और प्राइम मिनिस्टर सबकी इच्छा पूरी करने के लिए बैठे। सब लोग आते गए, प्राइम मिनिस्टर पूछे सबसे पहले व्यक्ति को, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? तो उस पहले व्यक्ति ने कहा कि सरकार, इस जेल में बहुत मच्छर काटते हैं, तो कम से कम कछुआ छाप या गुड नाइट इत्यादि कुछ व्यवस्था करा दो ताकि मच्छर न काटे। तो बड़ा प्रधान ने कहा ठीक है, इसकी इच्छा पूरी कर दो, जाओ मैं कहता हूं कल से इसे मच्छर न काटे ऐसी व्यवस्था की जाए। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे को पूछा आपको क्या चाहिए। दूसरे ने कहा कि सरकार यहां पर एक यह सफेद कपड़े पहन पहन कर मैं थक गया हूं, बासी कपड़े हैं, कुछ अच्छे जींस पैंट टी शर्ट पहनना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सरकार ने साइन कर दी, ओके आपको मिल जाएगा। तीसरा व्यक्ति आया, पूछा आपको क्या चाहिए। तीसरे ने कहा सरकार यहां पर रोज खिचड़ी खा खा कर थक गया हूं, कुछ अच्छा भोजन मिल जाए पंजाबी इत्यादि तो आनंद आ जाएगा। बड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, इसे कल से जो जो खाने की इच्छा हो वह दिया जाए। कितने, तीन व्यक्ति हुए। चौथा व्यक्ति आया, चौथे को पूछा आपको क्या चाहिए। चौथे ने कहा कि यहां पर काम कर करके हम थक जाते हैं, फिर भी दिन के 10 और 15 रुपया मिलता है, कुछ धन मिल जाता, 1-2 लाख रुपए मिल जाते तो सुखी हो जाता। सरकार ने कहा ठीक है, इसे 5 लाख रुपया दे दो। पांचवा व्यक्ति आया, बड़ा प्रधान ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो पांचवा व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने कहा आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। बड़ा प्रधान ने कहा इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। उन्होंने पहले वादा करवा लिया, आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। बड़ा प्रधान ने कहा हां, तो आप एक काम करो कि मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अब पांच लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग वस्तुएं मांगी। अब आप बताइए ये पांचों में से बुद्धिमान कौन निकला। पहला खिचड़ी वाला, कौन सा? पांचवा। क्या मांगा था उसने? मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, क्योंकि उस जेल में रहकर पांच या 50 लाख रुपए भी मिल जाए फिर भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, क्योंकि बेचारा जेल में है। उस जेल में रहकर पाव भाजी पिज्जा कुछ भी मिल जाए क्या वह सुखी हो सकता है? 2 मिनट के लिए सुखी हो सकता है, परंतु दूसरे ही घड़ी में याद आए कि उम्र कैद की सजा है। कितनी भी व्यवस्था की जाए, अच्छे कपड़े दिया जाए या मच्छर की सुविधा या खाने पीने की धन की सुविधा कुछ भी दिया जाए, जब तक वह उस जेल के बाहर नहीं निकलता है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यह भौतिक जगत, यह भौतिक संसार भी भगवान के द्वारा बनाई हुई एक जेल है, और इस जेल में रहकर सब लोग दुखी हैं जैसे उम्र कैद की सजा वाले दुखी हैं। और इस दुखी, इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी में दुखी लोग वास्तव में तब सुखी हो सकते हैं जब इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो इस भौतिक जगत में रहकर देवी मां से प्रार्थना करते हैं कि हमें धन मिल जाए, कई देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें गाड़ी बंगला मिल जाए, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, हमें अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, इस प्रकार से छोटी छोटी बातें मांगते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। वास्तविक जो मांगने की चीज है वे नहीं मांगते और इसमें फंस जाते। तो धर्म वास्तव में, धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष, इस भौतिक संसार से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाना। और इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाना इसे मोक्ष कहा जाता है। तो धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष, यहां पर सुद गोस्वामी कह रहे हैं। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, इस संसार में लोग धर्म का फल तुच्छ सुख मानते हैं, परंतु धर्म का अर्थ, धर्म का फल तुच्छ सुख नहीं है। धर्म का फल, धर्म ही अपवर्गस्य, धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति होना। बिल्कुल क्लियर दिखे लिखे हैं अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मुक्ति। दो शब्द है पवर्ग और अपवर्ग। अपवर जो शब्द है पवर का बिल्कुल विरोधी शब्द है। पवर का अर्थ होता है इस संसार में रहकर कष्ट भोगतना है। इस संसार को, इस भौतिक जगत को पवर कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग कहा जाता है। अच्छा, इस भौतिक जगत को पवर क्यों कहा जाता है तो हमारे आचार्यगण टीका में बहुत ही सुंदर लिखते हैं। पवर्ग, आप संस्कृत थोड़ा व्याकरण जानते होंगे, गुजराती या हिंदी में वर्ग आते हैं जैसे क वर्ग, प वर्ग इत्यादि, तो उसमें पांच अक्षर होते हैं। प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ और म, ये पांच अक्षर को पवर्ग कहा जाता है। इस भौतिक जगत को पवर्ग कहा गया है, क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में पांच वस्तुएं नित्य है। वे क्या है? तो प का अर्थ है परिश्रम। इस भौतिक जगत में जितने लोग रह रहे हैं सब लोग को परिश्रम करना ही होगा। जीवन जीने के लिए केवल सादा जीवन भी जीना हो तो परिश्रम करना ही होगा। सब लोग उद्यम परिश्रम करने में लगे हैं, कोई बड़ी इच्छा नहीं है। केवल तीन टाइम खाना है, कपड़े पहनना है, सोना है, इतना करने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम करने के बाद भी यह नहीं मिलता है। ये रमेश प्रभु रविवार को ही हमें बता रहे थे, प्रभु जी अब तो डायमंड का बिजनेस बस बंद होने जा रहा है, अब तो बस बंद हो गया, गर्मी आएगी दो तीन महीने के बाद तो यह सब बंद हो जाएगा। परिश्रम करने के लिए तैयार है, प्रभु जी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। परिश्रम करने के लिए तैयार है फिर भी वह काम नहीं मिल रहा है। तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति को केवल साधारण जीवन जीने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम। केवल मनुष्य की बात नहीं, सभी प्राणियों को भी। यद्यपि सिंह जो है, शेर, ये जंगल का राजा है, परंतु जंगल के राजा को भी यदि कुछ भोजन खाना हो तो शिकार ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। राजा है तो क्या हो गया है? इसलिए बहुत ही सुंदर नीति शास्त्र में कहा है, नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह यदि बैठा रहे तो कोई भी हरण या उनका शिकार उसके सामने से नहीं आएगा। सिंह को भी, जंगल के राजा को भी शिकार को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, उद्यम परिश्रम करना पड़ता है। तो इस संसार में परिश्रम है और बहुत परिश्रम है और सब लोग कर रहे हैं। और परिश्रम करते 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 दूसरा अक्षर है फ, फेण आ जाते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा कई वजन से, कई माल सामान से भरी हुई बैलगाड़ी से जब वो बैल खींचता है, वो वजन से भरी हुई गाड़ी को बैल खींचता है तो बैल के मुख से फेण आ जाते हैं। ठीक उस बैल की तरह ही संसार में रहने वाले मनुष्य इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं मुख से फेण आ जाते हैं, बहुत उद्यम करते हैं। और फिर ब की व्याख्या करते हैं कि बहुत परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम के फेण आ जाते हैं, परंतु वह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ का करते हैं। अब आप देखिए संसार की साधारण बातें हम केवल इस पर विचार नहीं करते। एक व्यक्ति विवाह करने के लिए कितना परिश्रम करता है, सबसे पहले तो 3-4 साल किसी लड़की को ढूंढने में निकाल देता है, और फिर विवाह करने के लिए धन एकत्रित करना होता है, बहुत उद्यम परिश्रम करके वह धन कमाता है, और धन कमाने के बाद फिर विवाह में भी कई लोगों को जुटाना बहुत परिश्रम करता है। और यह परिश्रम करने के बाद फल क्या मिलता है? 1-2 महीना तक ठीक चलता है, 3rd महीने पर झगड़ा शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति फिर मन में सोचता है कि विवाह नहीं किया होता तो अच्छा था, परंतु यह विवाह करने के बाद भी दुख है। वह दुख के लिए भी आगे कितना दुख वह झेलता है, केवल परिश्रम के अलावा कुछ नहीं करता है। इसलिए कहते व्यर्थ, परिश्रम तो कर रहा है परंतु व्यर्थ का परिश्रम कर रहा है। यदि विवाह करना ही नहीं था तो फिर इतना परिश्रम क्यों किया आगे। परंतु यह बुद्धि किसी में नहीं आती। तो प हो गया परिश्रम, फ हो गया फैन और ब हो गया व्यर्थ की। और कुछ आचार्य तो इसकी दूसरी व्याख्या भी करते हैं, परिश्रम करते हैं मुख से फीण आ जाता है, धन एकत्रित करते हैं, फिर ब का अर्थ है बे बे बे, बकरी की तरह चिल्लाते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाते हैं और कमाया हुआ धन यहीं पर उनके पुत्र उड़ा देते हैं बियर बार में। तो इस प्रकार से जीवन बीतता है यह भौतिक जगत। और यह करते 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 यह चौथा, यह भौतिक संसार की बात है, परिश्रम करते हैं फीण आ जाता है, व्यर्थ की बातें करते हैं, और फिर जब यह सब एकत्रित धन कर लेता है तब उसे भय होने लगता है। प फ ब भ, भयभीत होता है। इस संसार में जिसके पास बहुत धन है वे सबसे ज्यादा भयभीत है कि यह धन कोई चुरा न लेकर जाए, सिक्योरिटी रखते हैं। इस देश के वड़ा प्रधान भी जो बहुत बड़े पोस्ट पर माने जाते हैं उसे यदि रास्ते पे चलना हो तो वो नहीं चल सकते, और चलना हो तो आजू बाजू में बॉडी गार्ड रखते हैं। राजा महाराजाओं की जब यह हालत है, वड़ा प्रधान की यह हालत है, इस देश की सुरक्षा रखने वाले व्यक्ति की जब यह हालत है तो इस देश की प्रजा की क्या हालत होती होगी। सब लोग भयभीत हैं। पत्नी भयभीत है अपने पति से, पति डरता है अपनी पत्नी से, पुत्र डरते हैं अपने माता पिता से, सब लोग किसी ना किसी से डरते हैं। भय सबको है, और यदि किसी से भय ना हो तो मृत्यु से तो निश्चित भय है। मृत्यु से सब लोग डरते हैं। इसलिए अक्सर मैं इस पर कहता हूं, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। इतना भय होता है मृत्यु का नाम सुनकर कि रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय होता है। परंतु हमारे गोविंदास जी बहुत सुंदर गाए हैं कि इस संसार के भय से यदि मुक्त होना चाहते हो तो अभय प्रदान करने वाले गोविंद की शरण में आ जाओ। यदि गोविंद की शरण में आ जाते हो तो भगवान गोविंद सभी भय के हरने वाले हैं। भगवान का प्रभाव ऐसा है कि भगवान के प्रभाव से भय भी भयभीत हो जाता है। यद विभेति स्वयं भयम्, भय भी कांप जाता है। इसलिए इस संसार के भय से यदि मुक्त होना चाहते हो तो भगवान गोविंद की शरण लो। इसलिए कहते हैं, भज हुरे मन श्री नंद नंदन, भज हुरे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे भज। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, करहु ये भव सिंधुरे तर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे भज। बहुत ही सुंदर गोविंदा जी कहते हैं कि यदि संसार से भय हो, वास्तव में यह संसार भय का सागर है, इस भय के सागर से मुक्त होना चाहते हो तो गोविंद की शरण ग्रहण कर लो। आगे वे कहते हैं, शीत आतप बात बरीशन इति की याच पर देती रे। इस संसार में सुख और दुख, ठंडी और गर्मी के ऋतु के समान आते रहेंगे। जैसे दिवस के बाद रात और रात के बाद दिन, वैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहेंगे। परंतु इससे डरना नहीं चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यह सभी अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। शीत आतप बात वरीषण ए दिन यामिन जागिरे। शीत आतप बात वरीषण ए दिन यामिन जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन विफल, विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागी रे चपल। भजहु रे मन विनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। गोविंदा जी आगे कहते हैं कि संसार में लोग अपने धन पर, अपने पुत्र पर, अपनी पत्नी पर, अपने स्वजन पर बहुत अभिमान करते हैं और धन के अभिमान में वे भजन नहीं करते हैं। परंतु वे सतर्क करते हैं कि संसार में यह धन, पुत्र, परिजन, यौवन ये कब तक साथ देगा? बस कुछ दिन के बाद बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आ जाएगी, यह धन कब तक साथ देगा? कोई व्यक्ति यदि धन को चुरा कर लेकर गया, या तो धन हमें छोड़ देगा या हम धन को छोड़ देंगे, और अपने संतान कब तक हमारी साथ देंगे? वे कहते हैं ये कोई साथ में नहीं आएंगे और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कमल दल जल जीवन तल मल, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, कब हवा आ जाए और उस पानी के बूंद को गिरा दे, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है, कब काल आ जाए और यह शरीर यह आत्मा से गिरा दे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे। कमल दल जल जीवन तल मल, कमल दल जल जीवन तल मल। भजहु हरि पद नीति रे भजहु, भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। गोविंदा जी कहते हैं तो भय से बचना चाहते हो, भय को यदि दूर करना चाहते हो तो भगवान गोविंद की शरण में जाओ। यदि पूछा जाए भगवान की शरण में किस प्रकार से जाया जाए तो वे कहते हैं नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। ये नवदा भक्ति क्या है?
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन विनंदनंदन अभय चरण अरविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करहु ये भव सिंधु रे भजहु रे मन विनंदनंदन अभय चरण अरविंद रे
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। अपने मन को समझाए कि यह मन भगवान श्री गोविंद के चरण में लगे ताकि समस्त भय से दूर हो जाए। तो प फ ब और भ भय पे हम अटके हैं। यह भौतिक संसार का वर्णन हो रहा है। इस भौतिक संसार को पवर्ग कहा जाता है और पवर्ग में प परिश्रम, फ फेण, ब व्यर्थ का ही कार्य और भ भय और अंत में म मृत्यु निश्चित है। यह भौतिक संसार का स्वरूप है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे निश्चित एक ना एक दिन मरना है। और मरना किसे कहते हैं? भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु सर्व स्वहरस चाहम। अपना सब कुछ हर ले, अपना सब कुछ हर के चला जाए, धन पत्नी पुत्र यौवन या शरीर तक हर कर चला जाए उसे मृत्यु कहा जाता है। कुछ नहीं बचता है। व्यक्ति पूरे जीवन में बहुत उद्यम करता है सब कुछ प्राप्त करने के लिए, परंतु मृत्यु एक ऐसी घटना आती है कुछ सेकंड के लिए कि व्यक्ति को सब कुछ छुड़ा कर रख देती है। तो यह मृत्यु, यह है भौतिक संसार का स्वरूप। प फ ब भ और म, तो ये पांच चीज इसमें होती है, इसलिए इस भौतिक संसार को पवर्ग कहा जाता है। तो धर्म का पालन, अब आइए मूल टॉपिक के ऊपर, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म का पालन यह पवर्ग में फंसे रहने के लिए नहीं है, बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का पालन पवर्ग के परवर्ग में फंसने के लिए नहीं, धर्म का पालन अपवर्ग में जाने के लिए है। तो पवर्ग का अर्थ है यह भौतिक संसार और अपवर्ग का अर्थ है बिल्कुल विरुद्ध आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम। तो धर्म का पालन इसलिए नहीं करना है कि यहीं पर सड़ते रहे और मरे, धर्म का पालन करना है, इस भौतिक जगत से निकलकर भगवान के धाम में जाए। जिस भगवान के धाम में किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का उद्यम नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है और किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं है। गीता में भगवान क्लियर कहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते अर्जुन, एक बार कोई मेरे धाम में चला गया फिर न निवर्तन्ते, वापस वहां से कोई नहीं आता है। ये तो इस संसार में, इस भौतिक जगत में पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनर जन्म और मृत्यु लेना पड़ता है, भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। तो अपनी बुद्धि को बृहद करनी चाहिए, अपनी बुद्धि को विशाल रखनी चाहिए। धर्म का पालन इसलिए करना है ताकि भगवत प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, जहां पर नित्य सुख है। परंतु हम इतनी छोटी बुद्धि कर दिए हैं कि मुक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान के पास जाने की नहीं सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि कुछ दिनों के लिए धन मिल जाए, गाड़ी बंगला इत्यादि मिल जाए, हम सुखी हो जाए। वास्तविक में इस संसार में रहते हुए, इस भौतिक जगत में व्यक्ति को कितना भी धन दिया जाए वे सुखी नहीं हो सकता है। एक जगह तो कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति को सारा धन उसके बैंक बैलेंस में उसके नाम में जमा करवा दिया जाए, इस दुनिया का सारा सोना उसे दे दिया जाए, यदि खाने का बहुत इंटरेस्ट है तो सभी होटलें उसके नाम पर की जाए, तब जाकर उसे पूछा जाए कि तुम संतुष्ट हो, सुखी हो, तो वे कहेगा नहीं, मैं संतुष्ट और सुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वह जेल में फंसा हुआ है। जेल में कितना भी धन मिले, सोना मिले, वह बेचारा सोना लेके करेगा क्या? ठीक उसी प्रकार इस जेल में, इस भौतिक जगत रूपी जेल में रहकर वह दुखी है। वास्तव में धर्म का फल है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्ग की प्राप्ति करना। तुम सबको यह चीज ध्यान में रखनी है, धर्म का पालन करना है परंतु अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमारा जो लक्ष्य है बहुत ही ऊपर होना चाहिए। आगे कहते हैं, नार्थोर था उपकल्पते, इस बात को और पुष्ट कर रहे हैं, न अर्थ उपकल्पते, धर्म का पालन है अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए। धर्म का पालन इस संसार में अर्थ धन की प्राप्ति करने के लिए नहीं है। तब आगे कहते हैं, न अर्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। अब पहले धर्म का फल बताए, अब अर्थ का फल बताते हैं। इस संसार में धर्म का पालन करना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अब दूसरा बता रहे, इस संसार में अर्थ का अर्थ होता है धन की प्राप्ति, अच्छे पुत्रों की प्राप्ति, अच्छे घर की प्राप्ति, अच्छे गाड़ी बंगला इत्यादि। ये जो कुछ भी हमारे कर्म अनुसार हमें मिलता है, तो इसका फल यह मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसको भोगतना नहीं है। सुध गोस्वामी कहते हैं, न अर्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृत। अर्थ मिलने के बाद न कामाए, उसको भोगतना नहीं है। इस संसार में हमें अर्थ क्यों मिला है? इस संसार में हमें अच्छा घर, अच्छी पत्नी, ये सब कुछ क्यों मिला है? भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। यदि हमारे पास बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अर्थ, यदि हमारे पास अर्थ धन आ रहा है तो उस धन को भगवान की भक्ति करने के लिए लगाना चाहिए, उस धन को भगवान के मंदिर में, भगवान के भक्तों को दान करने में लगाना चाहिए। अगर हमारी अच्छी पत्नी मिली है तो उस पत्नी को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। यदि अच्छा पुत्र हमें मिला है तो उस पुत्र से भगवान की भक्ति करवानी चाहिए। यदि अच्छी गाड़ी हमारे पास हो तो उस गाड़ी का इस्तेमाल मंदिर में जाने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल एक शब्द में यह सब कुछ उपदेश दे दिए। न कामस्य, ये हमारी इंद्र तृप्ति के लिए, हमारे भोग के लिए यह अर्थ नहीं मिला है। हमारे जीवन में हमें जो अर्थ प्राप्त होता है यह भक्ति करने के लिए। तो अर्थ का फल है भगवान की भक्ति करना। और आगे कहते हैं, कामस्य न इंद्र प्रीति लाभ हो। काम जो है धर्म अर्थ धर्म हो गया, धर्म का पालन करना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और अर्थ हमारे जीवन में जो धन इत्यादि अर्थ मिलता है वे भगवान की भक्ति में लगाना है। और फिर काम, काम का अर्थ होता है कामना, इच्छा है। हमारे जीवन में कई सारी इच्छाएं होती हैं, तो यह इच्छा जो है, मान लीजिए कई लोगों की इच्छा होती है कि अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, परंतु वास्तव में यह बिल्कुल गलत इच्छा है। यह कामना, यह इच्छा, यह भोजन क्यों मिला है, तो कहते हैं केवल जीवन निर्वाह करने के लिए। देखिए बिल्कुल क्लियर सिद्धांत है, आज के श्लोक में किसी भी प्रकार की कथा नहीं है, केवल सिद्धांत ही दे रहे हैं। सुध गोस्वामी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, यह भोजन सुख प्राप्ति करने के लिए नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं यह खाऊंगा आनंद आ जाएगा, ये खाऊंगा आनंद, भोजन से सुख प्राप्त नहीं करना है। सुख प्राप्त करने के लिए कोई अलग साधन है, परंतु हम भोजन से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि भोजन से सुख प्राप्त करना चाहे भी तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कई दिनों से भूखा है और उसकी इच्छा है कि रसगुल्ला मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, और उसे रसगुल्ला मिल जाता है तो वह एक रसगुल्ला खाएगा, आनंद आया, दूसरा खाया आनंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, दस, पेट फुल हो गया, कैपेसिटी खत्म। और ग्यारहवा रसगुल्ला जब उसे खिलाया जाएगा तो पहले रसगुल्ला में उसे जितना आनंद आ रहा था, रसगुल्ला वही है, स्थान वही है, शरीर वही है, मुंह भी वही है, पहले रसगुल्ले में जो आनंद आ रहा था वही रसगुल्ला जब ग्यारहवा रसगुल्ला खाएगा तो वह उसे दुख देगा। एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु सुख भी देती है और दुख भी देती है। इस भौतिक संसार से, मैं भौतिक वस्तु से सुख नहीं मिलेगा, तो इस संसार के जो भोग है, काम है, मान लीजिए भोजन, तो भोजन जो है ये सुख आस्वादन करने के लिए नहीं है। तो क्यों है, वह भी कह रहे हैं, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो, भोजन जो है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। क्यों है, तो कहते हैं जीवेत यावता, केवल जीवन या शरीर टिक जाए, शरीर को टिकाने के लिए भोजन करना है, ये शरीर बच जाए, शरीर मर न जाए, इसलिए भोजन करना है, सुख के लिए नहीं। इसलिए अक्सर लोग समाज में प्रश्न पूछते हैं, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? लेकिन हमारी स्थिति खाने के लिए जीने के जैसी है। वास्तव में जीने के लिए खाना है, यह जीवन को टिकाने के लिए कुछ खा लिया बस कंप्लीट, लेकिन हम तो खाने के लिए जीते हैं, होटल में जाते हैं, यहां वहां रास्ते में खड़े रह जाते हैं, परंतु जीवन टिक जाए, बस जीवन जी जाए या जीवन बीत जाए, इसके लिए खाना है। तब मान लीजिए 88,000 ऋषि मुनि ने प्रश्न पूछा, ठीक है कामस्य, काम जो है ये जीवन टिकाने के लिए, तो जीवन को क्यों टिका कर रखना है, ये जीवन क्यों रखना है? तब कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अंतिम प्लेटफॉर्म पर आ गए, अब जीवन क्यों बचाना है, ये जीवन क्यों मिला है, इस शरीर को क्यों टिका कर रखना है? तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करने के लिए इस जीवन को टिकाना है। तत्व का अर्थ होता है, श्रीपाद जीव गोस्वामी तत्व का अर्थ करते हैं कि इस संसार में माया के द्वारा इस संसार में सभी लोगों को नचाया जा रहा है, लेकिन वह माया जिसके आश्रित है, वैसे भगवान के बारे में ठीक ठीक रूप से जानना, उसे तत्व कहा जाता है। क्योंकि तत्व के तत्व भगवान श्री कृष्ण है, सभी तत्व भगवान से ही निकले हैं, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये अर्जुन, ये आठ प्रकार की प्रकृति से यह पूरा भौतिक संसार बना है, ये क्या है, मेरी अभिन्न शक्ति है, मेरी एक शक्ति का रूपांतर इस भौतिक संसार के रूप में हुआ है। तो उस प्रभु को जानना इसे तत्व कहा जाता है। यह जीवन क्यों मिला है तो कहते हैं तत्व जिज्ञासा, इस जीवन को क्यों टिका कर रखना है, प्रश्न होगा हमारे मन में, प्रश्न होगा प्रभु आपने कहा कि भोजन करना है इस शरीर को टिका कर रखने के लिए, तो फिर इस शरीर को क्यों टिका कर रखना है, तो कहते हैं तत्व जिज्ञासा करने के लिए, भगवान के गुण रूप लीला के बारे में जानने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए इस शरीर को टिका कर रखना है। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से शास्त्र का बिल्कुल लिंक है कि काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये किस प्रकार से होता है और यह जीवन क्यों मिला है। यह जीवन मिला है भगवान को समझने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वह आत्मज्ञान करे, अपने बारे में जाने और तत्पश्चात परमात्मा के बारे में जाने। जब यह दोनों ज्ञान हो जाता है तब उस जीव को वास्तविक सुख प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति होती है, इस जेल से निकलकर भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए हम सभी भक्तों को यह शरीर यह जीवन टिका कर रखना है, यह सब चीज याद रखनी है। अब भोजन खाने में भी इच्छाएं प्रकट नहीं करनी कि ये खाना है वो खाना है, जो मिल जाए खा लेना है, अकिंचन है। और इस शरीर को टिका कर क्या करना है, भगवान के बारे में जानना है। और भगवान के बारे में जानने के लिए कहां से जानना है, तो श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला और बिल्कुल तत्व का निरूपण कराने वाला ग्रंथ है। अक्सर हम समझते थे श्रीमद् भागवतम में केवल कथा है, लेकिन देखिए गीता से भी कई सैकड़ों गुना बड़ा सिद्धांत यहां पर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जीवन भगवान के लिए आत्मा के लिए जिज्ञासा करने के लिए मिला है। और यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई जिज्ञासा नहीं करता है तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य येतत् पशुभेर नराणाम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति यदि जिज्ञासा नहीं करता है तो वह प्राय पशु के समान है, पशु भेर नराणाम। और ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। जो व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं रखता है, अपने बारे में अपने स्वरूप को नहीं जानता है और भगवान के बारे में नहीं सुनता है, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, वे इस मृत्यु लोक में भार है, बोझ है। और मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, और मनुष्य के रूप में वह पशु है। इसलिए हम सबको चाहिए कि यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस जीवन को टिका कर तो रखे ही है, तो जिज्ञासा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भागवत और गीता का अध्ययन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, यही है जीवन का सबसे बड़ा लाभ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।